अनिवार्य ओपनिंग नरेशन,
अनिवार्य ओपनिंग नरेशन।
एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथसार में आप सबका स्वागत। आज हम एक खास किताब पर बात करने वाले हैं, डीके नूरो का पहला उपन्यास व्हाट नेपोलियन कुड नॉट डू।
नमस्कार। हाँ, ये शीर्षक ही अपने आप में काफी दिलचस्प है। नेपोलियन क्या नहीं कर सका, ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी चुनौती की बात हो रही हो।
बिल्कुल, और ये चुनौती अमेरिका से जुड़ी है ना। डीके नूरो जो घानाई अमेरिकी लेखक हैं, आयोवा राइटर्स वर्कशॉप से निकले हैं और डायस्पोरा साहित्य में, मतलब जो लोग अपनी जड़ों से दूर रहते हैं, उनके साहित्य में एक अहम आवाज बनकर उभरे हैं।
हाँ, उनकी लेखनी पहचान, महत्वाकांक्षा, पारिवारिक रिश्ते, खासतौर पर गाना से अमेरिका जाने वाले लोगों के अनुभवों को मतलब बहुत गहराई से पकड़ती है।
सही कहा। ये उपन्यास 2022 में आया था और इसकी काफी तारीफ भी हुई। ये एक परिवार की कहानी है, अजेई परिवार की, लेकिन ये सिर्फ उनके घर की कहानी नहीं है।
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उम्मीदों, सपनों के बोझ और सफलता का असल मतलब क्या है, इसकी तलाश है।
और वो शीर्षक व्हाट नेपोलियन कुड नॉट डू, ये अमेरिका को जैसे एक आखिरी मोर्चा, एक ऐसा किला दिखाता है जिसे जीतना शायद नेपोलियन के लिए भी मुमकिन ना होता।
हाँ, और यही सोच, यही उम्मीद कहानी के किरदारों पर एक भारी, लगभग पौराणिक सा दबाव डाल देती है।
तो आज हम इसी कहानी में गहरे उतरेंगे, किरदारों के उतार चढ़ाव, उनके संघर्ष और जो मुख्य बातें उपन्यास उठाता है उन पर बात करेंगे।
बिल्कुल। तो कहानी हमें ले चलती है घाना, अजेई परिवार। परिवार के मुखिया हैं वाइल्डर, एक क्या कहते हैं, दबंग शख्स, रुतबे वाले और बेहद महत्वाकांक्षी।
हाँ, महत्वाकांक्षी। उनके जहन पर तो बस एक ही धुन सवार है,
एक जुनून। वाइल्डर का मानना है कि असली कामयाबी वो जो पीढ़ियों तक याद रहे, वो सिर्फ अमेरिका को फतह करके ही मिल सकती है।
फतह करके, ये शब्द ही बताता है कि वो इसे किस नज़र से देखते हैं, जैसे कोई जंग हो और ये उनका जैसे जीवन का मकसद बन गया है।
हाँ, और इस मकसद का झंडा वो अपने बेटे जेकब के हाथों में देना चाहते हैं।
वाइल्डर का किरदार लेकिन सिर्फ एक जिद्दी पिता का नहीं है, वो काफी जटिल है ना।
बहुत जटिल। घाना में उनकी इज्जत है, दबदबा है, वो स्वाभिमानी है, लेकिन विरासत को लेकर, मतलब लेगेसी को लेकर वो जुनूनी हो जाते हैं।
ऐसा लगता है जैसे उनके लिए सफलता का मतलब है पश्चिम की मंजूरी, खासकर अमेरिका की। शायद ये वो उत्तर औपनिवेशिक मानसिकता है कि असली जीत तो वही मानी जाएगी।
हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। और उनकी प्रेरणा क्या है, बच्चों के लिए प्यार या फिर अपनी ही अधूरी इच्छाओं को उनके जरिए पूरा करना?
शायद दोनों का मिश्रण। प्यार तो है लेकिन उसमें अपनी महत्वाकांक्षा इतनी घुली मिली है कि अलग करना मुश्किल है। वो बच्चों को शायद अपनी बड़ी योजना के मुहरों की तरह देखते हैं,
व्यक्ति की तरह कम, साधनों की तरह ज्यादा।
हाँ, ये एक तरह का मतलब भावनात्मक नियंत्रण ज्यादा लगता है प्यार से ज्यादा।
लेकिन कहानी सीधी नहीं चलती। वाइल्डर की सारी योजनाएं, सारी तैयारियां वो तब जैसे धरी रह जाती हैं
जब उनके होनहार बेटे जैकब को, जिसे सालों से इसी सपने के लिए तैयार किया गया था, अमेरिका का वीजा ही नहीं मिलता। बार बार अर्जी खारिज हो जाती है।
हाँ, किस्मत जैसे दरवाजे पर आकर लौट गई और फिर होता है एक अप्रत्याशित मोड़।
वीजा मिलता है जैकब की बड़ी बहन बेलिंडा को।
बिल्कुल। अब वाइल्डर के लिए शायद बेटी की ये कामयाबी बेटे जितनी बड़ी बात नहीं थी उनके मन के मुताबिक, लेकिन वो चालाक हैं, मौका हाथ से जाने नहीं देते।
तो वो बेलिंडा को अमेरिका भेज देते हैं, ये सोचकर कि वो वहां जाकर रास्ता बनाएगी परिवार के लिए।
हाँ, एक तरह से वो पहला कदम रखेगी और यहीं से कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। दो समानांतर दर्द भरी यात्राएं शुरू होती हैं।
एक भाई जो पीछे छूट गया घाना में, और एक बहन जो अनजाने भविष्य की ओर अमेरिका रवाना हो गई।
दोनों के कंधों पर उम्मीदों का पहाड़, लेकिन अलग अलग तरह का।
और यही उपन्यास का वो बुनियादी सवाल सामने आता है, किसी और के सपने को जीने की असल कीमत क्या होती है, क्या चुकानी पड़ती है।
बिल्कुल। ये सफलता, फर्ज, अपनी पहचान, इन सब पर सोचने को मजबूर करती है ये कहानी। और तीन मुख्य किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है।
वाइल्डर जो सपने बुनता है, बेलिंडा जो अनचाहे रास्ते पर चल पड़ती है, और जैकब वो वारिस जिसे नजरअंदाज कर दिया गया।
तो पहले बेलिंडा के सफर को देखते हैं। वो कैसी है? बहुत प्रैक्टिकल, जिम्मेदार।
हाँ, और जब उसे अमेरिका जाने का मौका मिलता है तो वो इसे एक फर्ज की तरह लेती है। चलो, करना है तो करना है।
लेकिन अमेरिका पहुंचकर उससे वो अमेरिकन ड्रीम जैसा कुछ महसूस नहीं होता। नूरू ने वहां के जीवन का बड़ा यथार्थवादी चित्रण किया है।
हाँ, कोई चमक दमक नहीं दिखाई। वो वर्जीनिया में एक साधारण सी आईटी की नौकरी करती है। वही कॉर्पोरेट कल्चर की बोरियत और उसे रोजमर्रा में वो छोटे छोटे नस्लीय ताने या व्यवहार
माइक्रोएग्रेशन जिसे कहते हैं,
हाँ, वो झेलने पड़ते हैं जो आपको लगातार याद दिलाते हैं कि आप बाहरी हैं और साथ में है गहरा अकेलापन।
उसकी जिंदगी का मकसद जैसे बस घर, पैसे भेजना और पिता की जो कभी न खत्म होने वाली मांगे हैं, उम्मीदें हैं, उन्हें पूरा करना बन गया है।
उसका अपना क्या है, उसकी अपनी खुशी कहाँ है? ये सवाल पीछे छूट जाते हैं और ये बदलाव बड़ा धीमा अंदरूनी है, जैसे कोई खामोश मोहभंग हो रहा हो।
हाँ, जैसे कोई दीमक धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही हो। उसकी मुलाकात एक शख्स फारूक से होती है, एक रिश्ता बनता है, शायद वहां खुशी की कोई उम्मीद हो।
लेकिन वाइल्डर की नजर वहां भी पहुंच जाती है। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता बेलिंडा को उसके असली मिशन से भटका देगा।
तो बेलिंडा का पूरा सफर क्या है? एक फरमाबरदार बेटी से
एक ऐसी औरत बनने का सफर जो अपने पिता की उम्मीदों के उस भारी पहाड़ के नीचे अपनी पहचान, अपनी इच्छाओं को टटोल रही है, और ये बहुत दर्दनाक प्रक्रिया है।
उसे अपनी शर्तों पर जीना है, लेकिन इसकी कीमत शायद उस पिता को निराश करना है जिससे वो बहुत प्यार करती है। ये कश्मकश बहुत मार्मिक है।
और उधर घाना में जैकब, उसकी हालत भी कुछ कम उलझी हुई नहीं है।
हाँ, वो पीछे छूट गया है और ये एहसास कि वो नाकाम रहा, कि वो काफी नहीं था, ये उसे घेरे रहता है, जबकि वो खुद बहुत काबिल है।
बिल्कुल, होशियार है, संवेदनशील है, एक अच्छा प्रोग्रामर है, वही बेटा जिसे अमेरिका के लिए इतने जतन से तैयार किया गया था।
उसका संघर्ष क्या है?
वो अकरा में अपना टेक करियर बना रहा है, काफी सफल भी हो रहा है। उसकी प्रेमिका है पेट्रिशिया, जिसके साथ वो अपना जीवन देख रहा है। लेकिन पिता की नजर में ये सब शायद काफी नहीं है। वाइल्डर उसकी हर कामयाबी को अमेरिका के उस सुनहरे पैमाने पर तौलते हैं, जैसे घाना में हासिल की हुई किसी भी चीज के कोई मायने ही नहीं।
ये जैकब के आत्मसम्मान के लिए कितना बड़ा धक्का होगा।
यकीनन, खासकर जब वाइल्डर फोन करते हैं, उन बातों में अक्सर निराशा होती है, बेलिंडा की तथाकथित सफलता से तुलना होती है,
जिससे जैकब के मन में पिता के लिए और शायद बहन के लिए भी एक दबा हुआ गुस्सा भर जाता है, एक कड़वाहट।
तो जैकब का सफर है उस पहचान को तोड़ने का जो उसके पिता ने उस पर थोपी है, अपनी नाराजगी से, बहन के साथ जो एक अजीब सी प्रतिद्वंद्वता पनप गई है उससे गुजरकर।
अपना मूल्य खोजना, ऐसा मूल्य जो पिता की हाँ या ना पर निर्भर न हो, जो इस बात पर निर्भर न हो कि वो गाना में है या अमेरिका में।
हाँ, और धीरे धीरे वो गाना में अपने बनाए जीवन में, अपने काम में, अपने रिश्ते में सार्थकता देखने लगता है। वो समझने लगता है कि इनोवेशन, कामयाबी, ये सिर्फ पश्चिम में ही नहीं होती, नहीं, भावनात्मक भी। गलत फहमियां हैं, अपराध बोध है, शायद थोड़ी जलन भी है।
बिल्कुल, जैसे दो अलग अलग नावों पर सवार हो, एक ही तूफान से जूझ रहे पर दिशाएं अलग हैं, और इस दूरी के पीछे कहीं ना कहीं वाइल्डर का हाथ है।
हाँ, उनका लगातार दखल देना, उनकी जोड़ तोड़, ये साफ नजर आता है। वो अनजाने में या शायद जानबूझकर दोनों बच्चों को एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा करते रहते हैं।
ये पारिवारिक रिश्तों की एक दुखद तस्वीर पेश करता है, जहां महत्वाकांक्षा प्यार पर हावी हो जाती है।
कहानी का अंत कैसे होता है? कोई एक बड़ा धमाका, कोई क्लाइमैक्स?
नहीं, वैसा कुछ नहीं, बल्कि ये धीरे धीरे पढ़ते खुलने जैसा है। तनाव भरे फोन कॉल्स होते हैं, एक बार परिवार मिलता भी है, और इन सबके जरिए भाई बहन अपने पिता के इरादों की और उनके असर की गहराई को समझने लगते हैं।
जैसे धुंध छटती है, बेलिंडा को ये कड़वा सच दिखता है कि उसकी कुर्बानियां उसे खुशी की तरफ नहीं ले जा रहीं, बल्कि उम्मीदों के एक ऐसे अंतहीन चक्कर में फंसा रही हैं,
जिससे निकलना मुश्किल है। अमेरिका का सपना उसके लिए एक सुनहरा पिंजरा बन गया है।
और जैकब, उसे क्या एहसास होता है?
उसे एहसास होता है कि जब तक वो पिता के बनाए रास्ते पर नहीं चलेगा, उसे उनकी मंजूरी कभी नहीं मिलेगी, और तब उसे चुनना पड़ता है, पिता की विरासत या अपनी खुशी।
ये दोनों के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट है, एक आंतरिक बदलाव, किसी और के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीने का फैसला करना।
और अंत, जैसा आपने कहा, कोई परिकथा जैसा नहीं है कि सब ठीक हो गया, बल्कि ज्यादा यथार्थवादी है। एक शांति है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से हासिल की गई है।
बेलिंडा अमेरिका में ही रहती है, लेकिन अब वो अपने पिता के साथ अपनी सीमाएं तय करती है, अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेती है।
हाँ, और जैकब पूरी तरह से घाना में अपने भविष्य को अपना लेता है, पिता की निराशा की छाया से आजाद होकर। वो अपने काम में, अपने रिश्ते में एक नया गर्व, एक नया मकसद पाता है।
और वाइल्डर, उनका क्या होता है?
वाइल्डर, वो अपनी उन बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ जैसे अकेले रह जाते हैं, ये इस बात का सबूत है कि वो अपनी जिद से, अपनी इच्छा शक्ति से अपने परिवार को बांध कर नहीं रख सके।
जिस चीज को वो सबसे ज्यादा चाहते थे वही उनके हाथ से फिसल गई,
बिल्कुल रेत की तरह।
चलिए अब जरा उन मुख्य विषयों पर बात करते हैं जो इस कहानी से उभरते हैं। पहला तो वही अप्रवासी अनुभव और अमेरिकन ड्रीम का मिथक।
हाँ, ये उपन्यास इस मिथक को जैसे तोड़ता है। ये दिखाता है कि ये सपना शायद उनके लिए ज्यादा मजबूत है जो पीछे छूट गए हैं, जैसे वाइल्डर। वो इसे जीत के प्रतीक की तरह देखते हैं।
जबकि जो असल में वहां पहुंचते हैं, जैसे बेलिंडा, उनके लिए हकीकत कुछ और होती है। रोजमर्रा का संघर्ष, अकेलापन, अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद, वो अफसर की भूमि कम, अलगाव और बिना पहचान वाली मेहनत की जगह ज्यादा लगती है।
दूसरा अहम मुद्दा है माता पिता का दबाव और बच्चों का फर्ज। वाइल्डर का प्यार उनकी महत्वाकांक्षा से इतना गुंथा हुआ है
कि उसे अलग करना नामुमकिन सा लगता है। और कहानी ये दिखाती है कि इस तरह का थोपा हुआ, नियंत्रण करने वाला प्यार कितना नुकसानदेह हो सकता है, शायद उतना ही जितना अनदेखी करना। ये बच्चों की अपनी पहचान को कुचल देता है।
और फिर सफलता की परिभाषा। वाइल्डर के लिए सफलता का एक ही मतलब है, अमेरिका पर विजय। लेकिन जैकब की कहानी इसे चुनौती देती है।
हाँ, वो एक मजबूत जवाब है कि अपने घर में, अपनी जड़ों के बीच भी एक सार्थक, कामयाब और इनोवेटिव जीवन बनाया जा सकता है। सफलता सिर्फ किसी खास जगह या बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं है।
भाई बहन के रिश्ते की जटिलता भी है। पिता उन्हें प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं, लेकिन उस जलन और नाराजगी के नीचे कहीं ना कहीं
एक गहरा अनकहा सा बंधन भी है। भाई बहन की वफादारी की एक महीन डोर जो पारिवारिक मुश्किलों के बावजूद शायद पूरी तरह टूटती नहीं।
और आखिर में विरासत का बोझ। वाइल्डर एक ऐसी विरासत बनाना चाहते हैं जो पीढ़ियों तक चले। लेकिन उपन्यास ये सवाल उठाता है कि क्या नियंत्रण और दूसरों के जरिए हासिल की गई कामयाबी पर टिकी विरासत असल में खोखली नहीं होती?
हाँ, शायद सच्ची विरासत अपने बच्चों को अपनी खुशी चुनने की आजादी देने में है, ना कि उन्हें अपने सपनों का बोझ उठाने पर मजबूर करने में।
अब जरा नूरो की लिखने की शैली पर भी बात कर लेते हैं। उनकी भाषा कैसी है?
बहुत सदी हुई, किरदारों के मन की गहराइयों में उतरती है। उसमें एक ठहराव है, एक तरह की शालीनता है, बहुत सटीक।
हाँ, और कहानी का ढांचा भी दिलचस्प है। थर्ड पर्सन में है, लेकिन कभी हम जैकब के नजरिए से देखते हैं, कभी बेलिंडा के।
इससे ना सिर्फ हमें उनके अलग अलग जीवन दिखते हैं, बल्कि उनके बीच जो दुखद दूरी बढ़ती जा रही है उसका एहसास और गहरा होता है। वो दूरी जिसे वाइल्डर अक्सर हवा देते रहते हैं।
प्रतीकों का इस्तेमाल भी खूब है। अमेरिका सर एक देश नहीं।
नहीं, वो सत्यापन, ताकत, शायद एक मायाजाल का प्रतीक बन जाता है।
नेपोलियन का जिक्र वाइल्डर की महत्वाकांक्षा की हद दिखाता है।
और टेक्नोलॉजी जिसमें जैकब माहिर है, वो जैसे एक नए भविष्य का संकेत है। एक ऐसा भविष्य जो उन पुरानी ताकतों पर निर्भर नहीं है जिनके मोह में वाइल्डर फंसे हैं।
कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन वो जानबूझकर रखी गई लगती है।
हाँ, वो किरदारों के संघर्षों की धीमी पीसने वाली सच्चाई को दर्शाती है। तनाव किसी बाहरी घटना से नहीं, बल्कि किरदारों के अंदरूनी दबाव के धीरे धीरे बढ़ने से पैदा होता है।
इससे हमें उनके मन की उथल पुथल को महसूस करने का वक्त मिलता है।
बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें महत्वाकांक्षा की छुपी हुई कीमतों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है।
हाँ, और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि बाहरी दबावों से, परिवार की उम्मीदों से परे अपनी खुशी और सफलता का रास्ता खुद तय करना कितना जरूरी है और कितना मुश्किल भी।
और ये आज के दौर में और भी प्रासंगिक है, जहां दुनिया भर में लोग अपनी जड़ों से दूर जा रहे हैं, परिवार सीमाओं के पार बटे हुए हैं,
और उम्मीदों का बोझ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक महसूस होता है। ये कहानी हमें रुक कर सोचने को कहती है कि हम सफलता को असल में मापते कैसे हैं, बाहरी दुनिया की वाहवाही से या अपने मन की शांति से।
अनिवार्य क्लोजिंग लाइन।
अनिवार्य क्लोजिंग लाइन।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।